नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिमंडल ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 लाने सहित कर्मचारी कल्याण, सौर ऊर्जा और विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले किए। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा, पिछली सरकार के समय जयपुर डिस्कॉम के टेंडरों में हुए भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर कल राज्य में निर्वाचन विभाग की ओर से शतायु मतदाताओं को सम्मानित किया जाएगा और प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। राज्य मंत्रिमंडल ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 लाने के साथ साथ कर्मचारी कल्याण, पत्रकार कल्याण, सौर ऊर्जा और प्रदेश के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। ये फैसले कल शाम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मंत्रिमंडल के निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में निवेश को बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स 2024 को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने चतुर्थ श्रेणी सेवा और समकक्ष पदों की शैक्षणिक योग्यता 5वीं और 8वीं कक्षा से बढ़ाकर 10वीं करने का निर्णय किया है। इन पदों पर भर्ती साक्षात्कार से कराने की बजाय राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। वाहन चालक के पद पर भर्ती की शैक्षणिक योग्यता 8वीं कक्षा उत्तीर्ण से बढ़ाकर 10वीं उत्तीर्ण करने का फैसला किया गया। इन पदों की भर्ती भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड लिखित परीक्षा के माध्यम से करेगा। श्री पटेल ने बताया कि विभिन्न विभागों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लगभग 60,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। उन्होंने बताया कि कार्मिकों के हित में विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। श्री पटेल ने बताया कि बिजली उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल ने 5,708 मेगावाट की सौर ऊर्जा और विंड सोलर हाइब्रिड परियोजनाओं के लिए 10,418 हेक्टेयर भूमि आवंटन की मंजूरी भी दी है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा है कि पिछली कांग्रेस सरकार के समय जयपुर डिस्कॉम के टेंडरों में हुए भ्रष्टाचार और अन्य अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि दोषी अधिकारियों और अन्य लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। श्री नागर ने कहा कि सरकार के समय प्रदेश में 42 ग्रिड सब स्टेशन बनाने के लिए विभिन्न टेंडरों के संबंध में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के माध्यम से परिवाद प्राप्त हुए थे। इस पर डिस्कॉम की ओर से जांच जारी है। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि डिस्कॉम के स्तर पर हुई जांच के परीक्षण के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर जल्द से जल्द रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्ट में दोष सिद्ध होने पर टेंडरों को निरस्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कल अजमेर में विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ और शिलान्यास किया। उन्होंने 2,23,00,000 रुपए लागत के विभिन्न पेयजल कार्यों का शुभारंभ किया। श्री देवनानी ने हाथीखेड़ा राज कॉलोनी में 59,00,000 रुपए लागत की सीसी सड़क, जगदम्बा कॉलोनी में 15,00,000 रुपए लागत की सड़क और प्रज्ञानगर में 18,00,000 रुपए के सड़क निर्माण कार्यों की शुरूआत की। इस अवसर पर श्री देवनानी ने कहा कि दीपावली से पहले अजमेर शहर की अधिकांश सड़कों की मरम्मत कर दी जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि शिक्षा नगरी के रूप में अजमेर की पहचान बनाए रखने को देखते हुए भारतीय तकनीकी संस्थान की तर्ज पर आरआईटी के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज का चुनाव किया गया है। इसी तरह आयुर्वेद विश्वविद्यालय भी खोला जाएगा। इसके लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के तीसरे कार्यकाल में पहले 100 दिनों में किए गए महत्वपूर्ण कामों के बारे में जानकारी देने के लिए आकाशवाणी जयपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिनों में विशेष श्रृंखला चलाई जा रही है। आज हम आपको कृषि क्षेत्र में किए गए नवाचार NPSS के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं।
नेशनल पेस सर्विस लांच सिस्टम यानी कि NPSS कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई एक डिजिटल पहल है। इसका उद्देश्य देश भर में पेस सर्विस लांच व्यवस्था में सुधार करना है। इस प्रणाली में एक मोबाइल ऐप और एक वेब पोर्टल शामिल है। एंड्रॉइड और iOS दोनों ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध ये मोबाइल ऐप उपयोगकर्ताओं को पेस्ट संबंधित जानकारी प्रदान करने में मदद करता है। ये वेब पोर्टल पेस्ट संबंधित घटनाओं की निगरानी करने और एडवाइजरी जारी करने के लिए भी बहुत उपयोगी है। NPSS में 61 फसलों के लिए पेस्ट पहचान मॉड्यूल और 15 फसलों के लिए समय पर उपचार संबंधित एडवाइजरी जारी करने के लिए मॉड्यूल शामिल है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस साल 15 अगस्त को किसानों, छात्रों, वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों के उपयोग के लिए इस सिस्टम का शुभारंभ किया था। NPSS के लाभों में बेहतर पेस्ट प्रबंधन करना, कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी और डेटा संचालित निर्णय लेना शामिल है। NPSS पेस्ट के कारण फसल के नुकसान को कम करने में मदद करता है और इस तरह से किसानों को समय पर और सटीक पेस्ट प्रबंधन से समाधान प्राप्त करके कृषि उत्पादकता को बढ़ाता है। न्यूज डेस्क की रिपोर्टिंग के साथ समाचार कक्ष से मैं दीपेंद्र खंगारू।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर कल निर्वाचन विभाग की ओर से राज्य भर में 100 वर्ष या इससे अधिक आयु के मतदाताओं को सम्मानित किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि इन वरिष्ठ नागरिकों को देश की निर्वाचन प्रक्रिया में उनके निरंतर योगदान के जरिए भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने में भागीदारी के वास्ते सम्मानित किया जा रहा है। श्री महाजन ने इस संबंध में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वृद्धजन दिवस पर जिला, उपखंड और पंचायत स्तर तक वरिष्ठ जन के लिए सार्वजनिक सम्मान समारोह आयोजित किए जाएं। ऐसे शतायु मतदाता जो कार्यक्रम स्थल पर आने में असमर्थ हैं, उनका घर जाकर सम्मान किया जाएगा। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत प्रदेश में आयोजित की जा रही गतिविधियों के तहत जैसलमेर में पुलिस की ओर से विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें पुलिस अधीक्षक कार्यालय और सभी थानों में श्रमदान कर साफ सफाई की गई। थानों में रिकॉर्ड व्यवस्थित किए गए, वहीं मालखाना में भी विशेष सफाई अभियान चलाया गया। जैसलमेर के ही पोकरण में अम्बेडकर छात्रावास में विद्यार्थियों ने परिसर में विशेष साफ सफाई की। इसी तरह NSS के स्वयंसेवकों ने रानीसर कच्ची बस्ती में श्रमदान कर स्वच्छता का संदेश दिया। जैसलमेर के लाठी में दुर्लभ प्रजाति के गिद्धों के नजर आने से वन्यजीव प्रेमियों में खुशी की लहर है। अनुकूल आबोहवा और रहवास के कारण ये प्रवासी गिद्ध यहां पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि इनकी सुरक्षा के लिए वन विभाग ने प्रयास तेज कर दिए हैं।
सरहदी जिले जैसलमेर के वन्य क्षेत्र लाठी में तेजी से विलुप्त हो रही गिद्धों की संकट प्रजातियों को देखा गया। अनुकूल आबोहवा व रहवास के चलते प्रवासी गिद्धों को मरुभूमि रास आ रही है। वहीं वन विभाग ने भी बढ़ रही दुर्लभ प्रजाति के गिद्धों की संख्या को देखते हुए सुरक्षा की कवायद तेज कर दी है। वन विभाग के कार्मिकों को बढ़ाकर सुरक्षा के लिहाज से गश्त भी तेज कर दी है। दुर्लभ प्रजाति के गिद्ध हिमालय के उस पार मध्य एशिया, यूरोप, तिब्बत आदि शीत प्रदेश इलाकों से आते हैं। ग्रिफन, हिमालयन व सिनेरियस प्रजाति के गिद्ध नजर आने से वन्य प्रेमी काफी उत्साहित है। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर।
प्रदेश के पश्चिमी जिलों से मॉनसून की विदाई लगभग हो चुकी है। वहीं पूर्वी और दक्षिणी जिलों में मॉनसून के सक्रिय रहने से हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी है। बीती रात उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही और पाली जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश हुई। प्रदेश में अब तक 678 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से 56% अधिक है। मौसम विभाग ने आज कोटा, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर और जोधपुर संभागों में बारिश की संभावना जताई है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आने वाले कुछ दिनों तक पूर्वी जिलों में बारिश की गतिविधियां जारी रहने के आसार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिमंडल ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 लाने सहित कर्मचारी कल्याण, सौर ऊर्जा और विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। ऊर्जा मंत्री हीरा लाल नागर ने कहा है कि पिछली सरकार के समय जयपुर डिस्कॉम के टेंडरों में हुए भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर कल राज्य में निर्वाचन विभाग की ओर से शतायु मतदाताओं को सम्मानित किया जाएगा और प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।